اس خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان کے علاقوں میں آیا کرتے تھے اور یوں یہاں کے رہنے والوں کو ان مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا اور کافی ٹائم گزر گیا تو یہاں کے لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، اب تک میں نے جتنے بھی تاریخی دشمنوں کے بارے میں آپ کو بتایا وہ سارے مرد تھے۔ آج میں اسلام دشمن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تاریخی دشمن جو عورت تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک نبی کی بیوی تھی۔ اس عورت کا نام وائلہ تھا اور وہ اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ اوپر سے تو خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی لیکن در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تھی۔ اس کی اسلام دشمنی اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا۔ اس کا جرم اور کارنامہ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم لوط کے کس گناہ میں اور کیسے ان کے ساتھ انوالو تھی۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے بابل شہر یعنی بیبلون سے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں یعنی جو آج کل جارڈن کہا جاتا ہے وہاں پہ رہائش اپنائی۔ یہاں کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام پر قابو پا کر آپ کو قید کر لیا، آپ کا مال چھینا اور آپ کے جانوروں کو بھی ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابراہیم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے پیچھے گئے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور الٹیمیٹلی حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑا لیا، ان کا مال اور سامان وغیرہ بھی واپس لیا اور ان دشمنوں میں سے بہت سو کو ان کے جرم کی سزا بھی دی۔ اس واقعے کے کچھ ٹائم بعد اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی نبوت عطا فرما کر شہر سدوم کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادتوں اور قابل نفرت گندے اور گھٹیا کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے گناہوں کی ایک لسٹ مجھے یاد پڑی ہے کہ شاید 33 ان کے گناہ پڑے تھے، جن میں بڑے گناہ یہ تھے کہ لوگوں کے سامنے پورا ننگا ہو جانا، خوبصورت لڑکوں کو گندی نگاہ سے دیکھنا، ان سے شہوت سے ہاتھ ملانا، ان سے گندی باتیں کرنا، مردوں اور نوجوانوں لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، سیکچول ڈیزائر پوری کرنا، مسافروں سے زبردستی یہ گندے کام کرنا، پھر کھلے عام مذاق اڑانے کے طور پر یہ باتیں ڈسکس کرنا، جو یہ گندا کام نہیں کرتے ان کو برا بھلا اور بیوقوف کہنا، بیویوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس قوم میں یہ گندی عادت پڑی کیسے تھی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گندا کام اس سے پہلے کسی بھی قوم نے کبھی نہیں کیا تھا، تو ایسے کیسے انہیں کرنے کی یہ چیز سوجی؟ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس قوم کی بستیاں بہت آباد، خوبصورت اور گرینری سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوہ جات کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ اس خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان کے علاقوں میں آیا کرتے تھے اور یوں یہاں کے رہنے والوں کو ان مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا اور کافی ٹائم گزر گیا تو یہاں کے لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے میں ابلیس یعنی شیطان ان کے پاس آیا ایک بوڑھے کی صورت میں اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کے آنے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ یہ بدکاری کرو، اس کے ساتھ زبردستی برا کام کرو۔ یہ مشورہ دینے کے بعد ان کی ہیزیٹیشن دور کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے گندا کام کروایا۔ اس طرح یہ گندا کام ان لوگوں میں شیطان نے سکھایا انہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اس برے کام میں اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور ان کی جگہ مردوں سے اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے اللہ پاک نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر و شرک اور دوسرے گناہوں سے باز آ جاؤ اور ان کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس کی میں، उस पर चलकर मेरी इताअत करो। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की गंदगी वाली आदतों पर वार्निंग देते हुए फरमाया कि क्या मखलूक में तुम ही इस हराम और खबीस काम के लिए रह गए हो कि मर्दों के साथ बदफेली करो और हलाल और पाकीज़ा औरतों को छोड़ दो जिन्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारी बीवियां बनाया है। तुम अपने इस गंदे काम की वजह से हद से बढ़ चुके हो। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में उन लोगों ने कहा कि ऐ लूत, अगर आप नसीहत करने और इस काम को बुरा कहने से बाज नहीं आए तो ज़रूर आपको हम इस शहर से निकाल देंगे। यानी कौम ने इनकी बात बिल्कुल ना मानी। जब कौम किसी सूरत भी अपने कामों से बाज ना आई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते भेज दिए। ये अजाब सिर्फ कौम के लिए नहीं था, इस अजाब का मज़ा वाइला को भी चखना था क्योंकि वो भी अपनी कौम के साथ इन गुनाहों में शरीक थी। वाइला कौम के गुनाहों और इस्लाम दुश्मनी में इस तरह शरीक थी कि जब भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर कोई भी मेहमान आते तो यह आग जलाकर कौम के बदकार तरीन लोगों को उन मेहमानों के बारे में बता देती थी। फिर वो आके मेहमानों के साथ बुरे काम और बदकारी करते थे और आखिरी बार भी उसने यही किया जब फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। जब आप अलैहिस्सलाम ने इनकी खूबसूरती देखी तो कौम की हरकतों की वजह से जो वो खूबसूरत नौजवानों के साथ किया करते थे ये सोचकर आप गमजदा हो गए और डर गए। किताबों में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म ये था कि वो कौम लूत को उस वक्त तक हलाक ना करें जब तक हजरत लूत खुद इस कौम के गुनाह पर 4 मरतबा गवाही ना दे दें। चुनाचे जब ये फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम के घर आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि क्या तुम्हें इस बस्ती वालों के बारे में नहीं पता था कि ये मेहमानों के साथ क्या करते हैं? फरिश्तों ने कहा, क्या करते हैं? फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अमल के एतबार से रूए ज़मीन पर यह बदतरीन बस्ती है। और ये बात आपने 4 मरतबा फरमाई। चुनाचे जब मेहमान आप अलैहिस्सलाम के मकान पर पहुंचे थे उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के घर वालों के अलावा किसी को उनके आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था, अल्लाह की दुश्मन वाइला घर से बाहर निकली और अपने कौम के पास जाकर जासूसी की और कौम के लोगों तक खबर पहुंचा दी कि आज हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं कि इन जैसे खूबसूरत और हसीन नौजवान मैंने आज तक नहीं देखे। कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों के आने की खबर सुनी तो वह अपने गंदे और नापाक इरादे के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत और लिहाज करना लाजिम होता है। तुम अपनी गंदी नीयत से मुझे शर्मिंदा ना करो क्योंकि मेहमान की बेइज्जती मेज़बान के लिए शर्मिंदगी होती है। कौम ने जवाब दिया, ऐ लूत, क्या हम आपको पहले ही नहीं मना कर चुके थे कि दूसरों के मामले में दखल मत देना? फिर क्यों आप हमारे उन मेहमानों के बीच में आ रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी कौम को समझाते हुए और इनको इनके ज़मीर को झंझोड़ते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, ये मेरी कौम की बेटियां तुम्हारे लिए निकाह की सूरत में पाकीज़ा हैं, सो अगर तुम्हें जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इनसे निकाह करके जायज़ तरीके से पूरे करो कि वो तुम्हारे लिए हलाल हैं और अल्लाह पाक से डरो, अपने कुफर और नाफरमानी से बाज आ जाओ और मेरे मेहमानों को कोई बुरा काम करके मुझे इनके सामने शर्मिंदा मत करो। क्या तुम में से एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई नेक आदमी, कि जिसकी बात मानकर तुम इस बुरे काम से बाज आ जाओ? नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर का दरवाज़ा बनकर अंदर से ये बातचीत कर रहे थे। सो कौम ने ये इरादा कर लिया कि दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाए और मेहमानों के साथ गुनाह करें। फरिश्तों ने जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेचैनी और परेशानी देखी तो अर्ज की, ए लूत अलैहिस्सलाम, आप डरे नहीं और गमजदा भी ना हो। हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं और वो अजाब लेकर आए हैं जिनमें ये लोग शक करते हैं। इनके बताने से पहले आप अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो नौजवान कौन है और किस इरादे से आए हैं। खैर, फरिश्तों ने आपसे ये भी कहा कि आप अपने घर वालों को रातों रात यहाँ से लेकर चले जाएं और इनमें से कोई भी पीठ फेर कर ना देखे। लेकिन फरिश्तों ने साथ में आप अलैहिस्सलाम को वाइला के बारे में भी बता दिया कि आपकी बीवी पीठ फेर कर देख लेगी क्योंकि उसे भी वही अजाब पहुंचना है जो इन काफिरों को पहुंचेगा। अब वाइला का अंजाम करीब था। आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से अजाब के बारे में पूछा कि ये अजाब कब होगा? फरिश्तों ने अर्ज की, इन पर अजाब वक्त सुबह का है। आपने फरमाया, मैं तो इससे भी जल्दी चाहता हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की कि सुबह का वक्त करीब ही है, आप इसे दूर ना समझें। अब आप दरवाज़ा खोल कर हमें और इन्हें छोड़ दें, ये लोग आप तक हरगिज़ ना पहुँच सकेंगे और ना ही आपको कोई नुकसान पहुँचा सकेंगे। फरिश्तों के कहने पर आप अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो लोग घर में घुस आए। हजरत जिब्रील ने अल्लाह पाक के हुक्म से अपना बाजू इनके चेहरों पर मारा तो वो सब के सब अंधे हो गए और घर से निकल कर भागे। लेकिन इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वो कहते हुए भाग रहे थे कि हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, इन्होंने हम पर जादू कर दिया है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और दूसरे ईमान लाने वालों को साथ लेकर बस्ती से निकल गए। इसके बाद कौम पर अजाब इस तरह आया कि हजरत जिब्रील ने कौम लूत के शहर जिस जमीन के हिस्से में थी उसके नीचे अपना हाथ यानी बाजू मुबारक डाला और उन पांचों शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा शहर सुदूम था और उसमें 4 लाख आदमी रहते थे, उस सारी बस्ती को अपने बाजू से बहुत ऊंचा उठाया, फिर उसे बुलंदी से उनको उल्टा करके नीचे की तरफ पलट दिया। इसी दौरान हजरत जिब्रील ने एक जोरदार चीख भी मारी और जो लोग उस वक्त बस्ती में मौजूद नहीं थे, वो कहीं सफर पर वगैरह पर थे, वो इन्हें लगातार पत्थर बरसाकर हलाक कर दिया गया। कुछ तफसीरों में ये भी आया है कि बस्तियां उलटने के बाद भी इन पर लगातार पत्थर बरसाए गए। वाइला अजाब का शिकार ऐसे हुई कि जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और ईमान लाने वालों को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। उस वक्त आपकी ये बीवी वाइला भी आपके साथ ही थी। आप अलैहिस्सलाम ने इन तमाम लोगों को फरमा दिया था कि कोई भी शख्स पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ नहीं देखे, वरना वो भी अजाब का शिकार हो जाएगा। तो आपके साथ जितने भी लोग थे उनमें से सब ने आपकी बात मानी, क्योंकि वो सब आपको नबी मानते थे और आप पर ईमान रखते थे, सो किसी ने भी पीछे मुड़कर बस्ते की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से बचे रहे। लेकिन वाइला चूंकि मुनाफिक थी, दिल में आपको नबी नहीं मानती थी, इसने आपकी बात पर यकीन नहीं किया और आपकी बात नहीं मानी, ना फरमानी करके बस्ती की तरफ देख लिया और प्लस शहर को उलटते हुए देखकर अफसोस से चिल्लाने लगी कि हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। बस यहाँ इसकी जबान से ये अल्फाज निकले और वहाँ अचानक अल्लाह का अजाब इस पर नाजिल हुआ और देखते ही देखते कहीं से एक पत्थर जोरदार तरीके से इस पर आगे आके पड़ा, जिसकी मार ये बर्दाश्त ना कर सकी और उसी वक्त पत्थर लगते ही अपने अंजाम को पहुंच गई। किताबों में एक बात यह भी मिलती है कि बस्ती से निकलते वक्त ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इसे भी वहीं छोड़ दिया था और जब कौम पर अजाब नाजिल हुआ तो ये भी उन्हीं के साथ अपने अंजाम को पहुंची। नाजरीन, कैसी बदनसीब यह औरत थी कि एक नबी की सोहबत में रहकर भी ईमान की दौलत से महरूम रही, बल्कि सिर्फ यही नहीं अपने नबी के दुश्मनों का साथ देती रही।